You are listening to Indian Scams, only on Audio Pitara with Aditya Raj Sharma. Bofors Scam. अक्सर बातचीत के बीच जब हम लोग बोल जाते हैं कि
कोई भी सरकारी काम या डील विदाउट किकबैक्स के नहीं होती यार,
तो क्या हम यूं ही बोल जाते हैं?
ना, ऐसा नहीं है।
बरसों बरस देखते आए हैं हम लोग कि ऐसा ही होता है।
ऑब्वियसली ये परसेप्शन बन जाता है, सो बन गया।
ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है, पर सच्चाई तो यही है कि पिछली कुछ सरकारों ने तो देश की सुरक्षा से जुड़े मसौदों में भी पलीता लगाया है। कोई भी डील विदाउट किकबैक्स के नहीं की गई। बोफोर्स डील भी उसी का सबूत है। 1980s-90s का बोफोर्स स्कैम हमारे देश में आर्म्स डील का सबसे अगली चेहरा है। उस ओर जब भी देखो वही बड़े बड़े नामचीन चेहरे आंखों के आगे तैरने लगते हैं, जो लोग देश को दशकों से चलाते आए हैं। आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग देश को चलाने वाले कहे जाते हैं। खैर, उनमें से कुछ तो अब नहीं है, किसी और ही दुनिया में। आई विश मे गॉड सेव वो दुनिया। वैसे यू वोंट बिलीव कि बोफोर्स डील के इटालियन बिचौलिए को एट लास्ट क्यों छोड़ दिया गया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का कहना था कि टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई को देश उसके प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन, जिस आर्म्स डील में 1.42 करोड़ डॉलर्स की रिश्वत बांट दी गई हो, उसके एक बिचौलिए को न पकड़ने का ये क्या बेमिसाल बहाना था। पिछले दशकों में क्या खूब सिस्टम गढ़ा है देश ने पावरफुल लोगों को सजा से बचाने का। आपको बताता चलूं कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स एबी ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ आर्म्स डील के लिए 1.42 करोड़ डॉलर्स की रिश्वत बांटी थी। दरअसल उस भगौड़े बिचौलिए को पकड़ना ही किसे था। 1993 में इंडिया से भागा ओटावियो क्वाट्रोची 20 साल तक पूरी दुनिया में खुलेआम घूमता रहा और आखिर 22-23 जुलाई 2013 को बिल्कुल नेचुरली अपनी मौत मर गया। सिर्फ वो ही नहीं मरा, बोफोर्स स्कैम के अक्यूज्ड एस के भटनागर, विन चड्डा और मार्टिन अर्डोबो जैसे ज्यादातर बिग फिश किसी तरह भगवान को प्यारे हो गए। पर जिंदा रहते हमारा कानून उन स्कैमर्स का एक बाल भी बांका नहीं कर सका। मैं एक शॉर्ट फ्लैशबैक के जरिए फटाफट आपको बोफोर्स स्कैम की क्रोनोलॉजी बतलाता हूँ। 24 मार्च 1986 को इंडियन गवर्नमेंट और स्वीडन के आर्म्स मैन्युफैक्चरर बोफोर्स एबी के बीच 1437 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इस डील से इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 होविट्जर तोपों की सप्लाई होनी थी, पर 16 अप्रैल 1987 को एक खबर कांग्रेस के लिए भूचाल ले आई। स्वीडन रेडियो ने कहा कि आर्म्स मैन्युफैक्चर कंपनी ने डील के लिए इंडियन पॉलिटिशियंस और डिफेंस के अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। आप समझ सकते हैं इस खबर का क्या असर हुआ होगा देश में। 20 अप्रैल 1987 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में कहा था,
कोई रिश्वत नहीं दी गई, बिचौलिए वाली बात भी गलत है।
6 अगस्त 1987 को रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित कर दी गई। आप जानते हैं ऐसी न जाने कितनी जेपीसी अब तक गठित हो चुकी हैं। उनकी जांच का अल्टीमेटली क्या होता है ये भी देश जानता है। फरवरी 1988 में भारत की एक इन्वेस्टिगेशन टीम स्वीडन पहुंची। उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 18 जुलाई 1989 को संसद को रिपोर्ट सौंपी। बोफोर्स स्कैम का ऐसा असर हुआ कि नवंबर 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। नतीजतन राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर 1989 को नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और फॉर्जरी का मामला दर्ज किया, जिसमें बोफोर्स के देन प्रेसिडेंट मार्टिन अर्डोबो के अलावा बिचौलिए विन चड्डा
और हिंदुजा ब्रदर्स को आरोपी बनाया गया। बोफोर्स के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही 21 मई 1991 को LTTE द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। वैसे राजीव गांधी की हत्या का बोफोर्स केस से कोई संबंध नहीं था। 1997 में वर्षों की लीगल फाइट के बाद स्विस बैंक्स ने लगभग 500 डॉक्यूमेंट्स जारी किए। 1999 में इंडियन गवर्नमेंट ने बोफोर्स पर से प्रतिबंध हटा लिया। ये कारगिल वॉर का टाइम था। बोफोर्स तोपें कारगिल वॉर में बहुत एफिशिएंट साबित हुईं। 22 अक्टूबर 1999 को बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की सत्ता में सीबीआई ने क्वाट्रोची, विंचड्डा, राजीव गांधी, डिफेंस सेक्रेटरी एस के भटनागर के अलावा कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। लेकिन 2001 में विंचड्डा और एस के भटनागर चल बसे। 10 जून 2002 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अब तक की सभी कार्यवाही रद्द कर दी। हालांकि जुलाई 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उलट दिया था। 2004 में केंद्र सरकार बदली और कांग्रेस फिर से पावर में आई। 5 फरवरी 2004 को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज कर दिया। 31 मई 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा के खिलाफ आरोपों को भी खारिज कर दिया। जनवरी 2006 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने एफिडेविट में क्लेम किया कि वो अब भी क्वाट्रोची के एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर को परस्यू कर रही है। सीबीआई की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल ने क्वाट्रोची की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। 6 फरवरी 2007 को क्वाट्रोची को अर्जेंटीना में डिटेन किया गया, लेकिन सीबीआई ने उसके डिटेंशन की न्यूज 23 फरवरी को जारी की। अर्जेंटीना की पुलिस ने क्वाट्रोची को रिहा कर दिया, क्योंकि इंडिया एंड अर्जेंटीना के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, इसलिए क्वाट्रोची को एक्सट्राडाइट करने का मामला अर्जेंटीना के सर्वोच्च न्यायालय में प्रेजेंट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट प्रत्यर्पण यानी एक्सट्रेडिशन का मामला हार गई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक इम्पोर्टेंट कोर्ट ऑर्डर पेश नहीं किया जो क्वाट्रोची को अरेस्ट करने का आधार था। 12-13 जुलाई 2013 को मिलान में हार्ट अटैक से क्वाट्रोची की भी डेथ हो गई। 2 फरवरी 2018 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करके दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी। 1 नवंबर 2018 को बोफोर्स स्कैम की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से क्यों आई। एक्चुअली सीबीआई ने बोफोर्स केस को उस वक्त जिस तरह से हैंडल किया, देश के लीगल ईगल्स, सोशल एक्टिविस्ट्स और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी खूब आलोचना की। सीबीआई की मजबूरी किसी से छुपी नहीं थी। साफ समझ में आ रहा था कि कौन था इस लचर या लाचार दिखती हुई पूरी कार्यवाही के पीछे। हाँ, तो ये था मोटा मोटा बोफोर्स स्कैम का किस्सा। ऑफ कोर्स मैं कुछ कुछ बातें जरूर स्किप करता गया हूँ, पर मेनली यही है बोफोर्स स्कैम की क्रोनोलॉजी। ऐसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इतने विवादों के बाद भी बोफोर्स तोपों को कारगिल वॉर में बड़े पैमाने पर प्राइमरी फील्ड आर्टिलरी के रूप में इस्तेमाल किया गया। बैटल फील्ड के कमांडर्स ने भी कहा कि बोफोर्स तोपों ने हमें दुश्मन के खिलाफ अच्छी बढ़त दी थी। ये था 1980s-90s का बोफोर्स स्कैम। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।